Krishnapristhaya Bhutale
Krishnapristhaya Bhutale
Srimate Bhakti Vedanta
Srimate Bhakti Vedanta
Swaminiti Namine
Swaminiti Namine
Namaste Saraswati Devi
Namaste Saraswati Devi
Gauravani Pracharine
Gauravani Pracharine
Nirvisheshashunyavadi Paschatadeshatarine Gurave Gaurachandraya Radhika Tadalyai Krishnaya Krishna Bhaktaya
Krishnaya Krishna Bhaktaya
Tad Bhaktaya Namo Namaha
Tad Namo Namaha
Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Narayanam Namaskrityam
Narayanam Namaskrityam
Naram Chaiva Narottamam
Devim
Saraswatim Vyasam
Devim Saraswatim Vyasam
Tato Jayam Udiraye
Tato Jayam Udiraye
Nashta Praishwa Bhadresho
Nashta Praishwa Bhadresho
Nityam Bhagavata Sivaya
Nityam Bhagavata Sivaya
Bhagavate Uttama Shloke
Bhagavate
Bhaktir Bhavati Naishtike
Krishnaya Vasudevaya
Devaki Nandanaya cha
Nanda Gopa Kumaraya
Govindaya Namo Namaha
Govindaya
Jai Sri Krishna Chaitanya
Jai Sri Krishna Chaitanya
Prabho Nityananda
Prabho Nityananda
Shri Advaita Gadadhara
Shri Advaita Gadadhara
Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda
Shivasadi Gaura Bhakta
Vrinda Hare Krishna Hare Krishna
Hare Krishna Hare
Krishna Krishna Hare Hare
Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama
Hare Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare
Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Aap sabka Sri Sri Radha Vrindavan Chandra Mandir ISKCON Pune mein prata Ravivar ke Bhagavat satsang mein swagat hai आज बहुत पावन भगवान श्री कृष्ण की द्वारका लीला में मुख्य प्रियसी रुक्मणी देवी का आविर्भाव तिथि का महोत्सव है और रुक्मणी देवी की शरणागत की विधि और रुक्मणी देवी लक्ष्मी है तो एक वैष्णव संप्रदाय की परवर्तिक है जो श्री संप्रदाय की परवर्त हुई लक्ष्मी देवी है तो उसकी शिक्षाएं भगवत प्राप्ति के मार्ग में जो वैष्णव पद्धति की हैं वो सात श्लोकों में ही उनकी प्रार्थना है जो भगवान को उन्होंने वर्ण करने के लिए पत्र लिखा है लेकिन वो भगवान को बगैर देखे के वर्ण किया है तो ये मुख्य भक्ति का अंग है। इसको भक्ति का जो 12वां अध्याय है उसमें मुख्य श्लोक आरंभ भी श्रद्धा से होता है और अंत भी श्रद्धा से होता है। श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतिमेय प्रियः। तो श्रद्धा की परिभाषा है जो चीज सामने नहीं है उसके ऊपर विश्वास हो, जो सामने हो उसके ऊपर विश्वास कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन श्रवण अगर किया जाए प्रमाणिक परंपरा से तो उसके ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। इसलिए ब्रह्म को मानना मुश्किल नहीं है, प्रकाश है। जैसे किसी बच्चे से पूछो कि अभी दिन है कि रात है तो कहेगा दिन है, कैसे बाहर प्रकाश है, तो ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई भी कह सकता है। और परमात्मा को समझने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, बाहर जाके सूरज को देखने का प्रयास करेंगे। और मैं आज अगर आपसे पूछूं इतने लोग कितने लोगों ने जाके सुबह सूरज को देखा है, आए हो लेकिन किसी ने देखा नहीं। अरे भगवान श्री कृष्ण का प्रथम शिष्य परम वैष्णव है, उसको सुबह उगते हुए पहले लोग प्रणाम करते थे, ये भगवान का महान भक्त है भाई, नहीं भगवत गीता का पहला शिष्य है कि नहीं है। लेकिन उसको देखने के लिए किसी को प्रयास नहीं करते, बहुत कम लोग करते हैं। इसका मतलब परमात्मा सबके हृदय में बैठे, उसको ढूंढता कोई नहीं। और अगर रात को ढूंढना चाहे तो सूर्य को नहीं ढूंढ सकते, ऐसे अज्ञानता के लोग तो परमात्मा के बारे में सोच भी नहीं सकते। फिर भी अगर थोड़ा प्रयास करें, कोई सूरज को सुबह उठ के या राइजिंग सन को या सेटिंग सन को देख सकते हैं, दोपहर के सन को नहीं देख सकते। लेकिन सूर्य देवता है, विवस्वान उसका नाम है, ये मानना बहुत मुश्किल है। ब्रह्म मानना तो बच्चों का खेल है, बच्चा भी कह सकता है कि अभी दिन है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। परमात्मा मानने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, लेकिन भगवान मानना बहुत मुश्किल है कि इस जलते हुए आग के गोले में और एक विवस्वान है और घोड़ों के ऊपर चढ़ के रथ चला रहा है, ये कोई आदमी मानेगा क्या? इसके लिए केवल शब्द प्रमाण से माना जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैंने सूर्य देव को भगवद गीता दी, तो कोई व्यक्ति होगा उसने सुनी होगी ना। और फिर उसका बेटा है विवस्वत मनु, और जो इस मनवंतर का अधिपति है। अब ये विश्वास करने के लिए शास्त्र के ऊपर, साधु के ऊपर, भगवान के वचनों के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। तो विश्वास ही भक्ति का बीज है असल में, शुरू ही आदव श्रद्धा से होता है। तो रुक्मणी जी के विश्वास को हम अगर समझें कि भगवान का वर्णन कैसे किया है, तो ये श्लोक आज का जो आज की कथा के लिए रखा है, ये उत्तर अर्ध दशम स्कंद का जो पहला अर्ध है वो उसमें मथुरा लीला तक वर्णन है। और भगवान के 11 एक वर्ष वृंदावन में और 17-18 वर्ष मथुरा में है, उसके बाद शेष जो भी 101 वर्ष से के भगवान की लीला है वो द्वारका की लीला है। तो 52 अध्याय में दशम स्कंद के रुक्मणी मंगलम, रुक्मणी मंगलम का वर्णन है। तो उसका ये 23वां श्लोक हम अब पाठ करेंगे और फिर इसके आगे और पीछे के श्लोकों का थोड़ा रसास्वादन करेंगे, क्योंकि ये सिद्धांत का श्लोक है। तो आइए इसका श्रवण करें। सोपश्रुत्वा मुकुन्दस्य रूप वीर्य गुणश्रिय ग्रहागतेर्गीयमाना तम्मेने सदर्शं पतिम् सोपश्रुत्वा मुकुन्दस्य रूप वीर्य गुणश्रिय ग्रहागतेर्गीयमाना ग्रहागतैर्गीयमाना तं मेने सदृशं पतिम् सोपश्रुत्य मुकुन्दस्य रूपवीर्य गुणश्रिया ग्रहागतै गीयमाना तं मे ने सदर्शं पतिम् सोपश्रुत्या मुकुन्दस्य
रूपवीर्य गुणश्रिया
मुकुन्दस्य ग्रहागतेर्गीयमाना थाम्नेने सदृशं पते सोपश्रुत्या मुकुन्दस्य रूपवीर्या गुणश्रियः न्यायगतैर्गीयमाना तम्नेने सदृशं पतिम् वैष्णवी माता सोपश्रुत्या मुकुन्दस्य मेने सदर्शं पतिम् स का मतलब है रुक्मणी देवी। उपश्रुत्या एक श्रुत्या होता है सीधा सुनना, एक होता है उपश्रुत्या। उपश्रुत्या मतलब किसी को सुना रहा था और सुन लिया, ये उपश्रुत्या लिखने की ये विशेषता है कि रुक्मणी देवी अभी कुंवारी कन्या है, कोई ब्राह्मण आएगा सीधा उससे जाके नहीं सुनेगी, वो किसी को राजा को सुना रहे थे तो वो सुन रही थी, ओवरहर्ड जिसको कहते हैं, एक सिंसियरली हियरिंग। जैसे ऊपर का ये मंदिर में बनाते हैं ना, कि पुराने जमाने में माता लोग ऊपर से बैठ के सुनती थी, ये जनरली ऐसे इसलिए बनाया इस तरह की। तो राजा के महलों में ऐसे स्थान था जहां से जो है वो स्त्रियां सुन सकती थी। तो उपश्रुत्या का मतलब ऐसे है ऊपर से सुना, ओवर हर्ड ऊपर से सुना तो इससे माताओं को ऊपर का स्थान दिया है वेदों ने, ऊपर नीचे नहीं ठीक है ना। और मुकुन्दस्य, वैसे तो भगवान के बहुत से नाम हैं, लेकिन यहां मुकुन्दस्य कहने का मतलब है अब रुक्मणी को तो इससे पहले के श्लोकों में ये सीधा आ गया है अथवा आ रहा है कि उसका पिता और चार भाई और माता कृष्ण से विवाह कराना चाहते थे, लेकिन उसका एक भाई जो बड़ा रुक्मी था वो रुकावट था। तो इसलिए भीष्मक महाराज बड़ा धर्मात्मा था, क्योंकि इस श्लोक से लगता है कि उसके राज में बड़े से ऋषि नारद आदि और महात्मा आया करते थे, तो वो धर्मात्मा था उससे लगता है। तो कभी उपमा देते हैं कि रुक्मी खीर सागर है और उसमें से प्रकट हुई रुक्मणी तो लक्ष्मी है, लेकिन पहले विष निकला था वो रुक्मी है। पहले विष निकलता है ना, सबसे बड़ा बेटा वही है ना, तो वो विष है और लक्ष्मी रुक्मणी है। सो रुक्मी ने रुकावट डाला तो अब तो रुक्मणी शिशुपाल से विवाह करने के लिए प्रस्ताव रख भी दिया, और जो जरासंध के साथ उनका सारों का सरदार जरासंध था, तो अब इस चुंगल से मुक्त होना है ना, तो मुक्त मुकंदस्य, बहुत से नाम भगवान के लिखे जा सकते हैं। आगे श्लोक आता है गोविंद अपि, गोविंद भगवान ने भी विवाह किया, अपि डाल दिया गोविंद के साथ, के भगवान को विवाह करने की जरूरत नहीं है, वो आत्माराम है, आपत काम है। लेकिन यहां गोविंद का अर्थ है कि पृथ्वी के ऊपर अवतार लेने के समय जो लोक व्यवहार कर रहे थे, लीला कर रहे थे, इसलिए विवाह किया, क्योंकि उससे पहले सीधा ऐसे लिखा है कि रुक्मणी भगवान की नित्य प्रिय सी है, तो नित्य प्रिय सी है तो विवाह करने की क्या जरूरत है, वो तो नित्य है ही ना। लेकिन गोविंद का, वैसे गोविंद के बहुत से अर्थ है, इंद्रियों को गायों को आनंद देने वाला, लेकिन गो का अर्थ पृथ्वी भी है, तो पृथ्वी के भार उतारने के लिए जब भगवान आए तो ये भी पृथ्वी का भार ही उतारना था। रुक्मणी को हरण करते समय बहुत से असुरों को मारने की जरूरत पड़ गई, तो ये भी एक बहाना था भार उतारने का। तो वहां गोविंद का अर्थ है गोविंद अपि, अपि शब्द डाल के भगवान को विवाह करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो धरती के ऊपर अवतार लेकर आए थे, और क्योंकि उनको धरती का भार उतारना था और लोगों को आनंद देना था, इसलिए उन्होंने विवाह किया। लेकिन यहां मुकंदस से, जो मुक्त करा सकता है कहां से, बंधन से, चाहे वो गुणों का बंधन हो या संसार के मोह का बंधन हो, लेकिन सब बंधनों से मुक्त कराने वाले मुकंदस्य, मुक्त मुकंद की। तो रुक्मणी देवी ने भगवान श्री कृष्ण की क्या किया, उसके बारे में क्या सुना, तो भगवान षड गुणीय षड ऐश्वर्य संपन्न है, तो उसमें से चार गुणों का यहां वर्णन है। रूप मतलब सुंदरता, राधा गोविंद महाराज कहते हैं भगवान कृष्ण के अवतार से पहले लोग कभी किसी सुंदरता का वर्णन करते थे ना, तो केवल स्त्रियों की सुंदरता गाते थे कि वही सुंदर है, लेकिन कृष्ण के अवतार के बाद सबको छोड़ दिया, बोला यही सुंदर है और कोई सुंदर नहीं, इसके बाद और किसी की सुंदरता की उपमा देने के लिए कुछ बच ही नहीं गया। तो ये इतना परम सुंदर है अपने आप में कि अपने को ही पता नहीं लगता है कि मैं कितना सुंदर हूं, ये तो उसकी परेशानी है कि सब लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, आखिर क्या है मुझ में, ये भगवान के लिए बहुत बड़ा अपने लिए आश्चर्य। और ऐसे किसी महाभारत आदि में वर्णन है कि सबने कहा कि इसको बनाने के बाद अभी कोई सुंदरता तो ब्रह्मा के पास बची नहीं, हो तो कंगाल हो गया, ये आखिरी उसने बनाया है सुंदर, इसके बाद मसाला ही खत्म हो गया सुंदरता का। तो भगवान की सुंदरता विलक्षण है और अद्वितीय है, उससे किसी और की तुलना नहीं की जा सकती, उसका नाम ही आकर्षण करने वाला, जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर ले, तो सुंदरता सबको आकर्षण करती है, तो वो परम सुंदर है, परम सुंदर है, कितने सुंदर है कि उसको देखने के बाद और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आंखों का यही उत्सव है, नयन उत्सव है। इसलिए रूप गोस्वामी नेगेटिव एस्पेक्ट में कहते हैं, अरे भाई कभी वृंदावन जाना मत, अगर गलती से जाओ तो जमुना के किनारे मत जाना, उधर जाओ तो बंसी बटके और मत देखना, अगर देखो तो वहां एक सांवला सा खड़ा होगा टेढ़ा, उसको बिल्कुल मत देखना, एक बार देख लिया तेरा दुकान मकान घर परिवार सब तबाह हो जाएगा। उधर देखा नहीं और तुम्हारा सब गया नहीं, और फिर तुम्हारा वापस आना संभव नहीं है। इसलिए बहुत अभी बुद्धिमान लोग हैं, वृंदावन जाते हैं सीधा सा आलू की टिक्कियां खाते हैं और वापस आते हैं। वो रूप गोस्वामी का उन्होंने इतना अच्छा इस कथन का पालन किया है, और जब लोग दर्शन के लिए भगवान के रूप के दर्शन के लिए जाते हैं ना किसी मंदिर में, तो बाहर बैठे हुए तवे के ऊपर घी डाल के छूं थोड़ा सा करके एक आलू की टिक्की रख दे, भगवान का रूप भूल गया और नासिका में खुशबू आ गई, तो बोले ये खा लेते हैं, भगवान थोड़ी कहीं जा रहे हैं। तो लोगों के जाने का पता लगता है कि वो भगवान को देखने जा रहे हैं कि आलू टिक्कियां खाने जा रहे हैं, प्रायोरिटी क्या है पता लगता है। पहले जमाने लोग गंगा, जब गंगा स्नान करने के लिए जाते थे तो जब तक वहां पहुंचते नहीं थे तब तक कहीं रुकते नहीं थे, खाते नहीं थे, कि पहले स्नान करेंगे उसके बाद जलपान करेंगे, ये तीर्थ यात्रा का महत्व होता था। और रात को भी कुछ नहीं खाते थे, ये तो निकलते 7 होटलों में खड़े होते हैं। गंगा माता भाग गई वहां से, बोला ये कहां भूत आ रहे हैं। तो तीर्थ की यात्रा का नियम होता है। तो स उपश्रुत्या मुकंदस्य रूप, और दूसरा हमने आश्चर्य यह देखा है कि मंदिर में भगवान आते हैं भगवान का रूप देखने के लिए और वहां आंखें बंद करके ऐसे खड़े होते हैं। अरे देखने आए हो भगवान को, आंखें खोल के देखो ना, वहां आंखें बंद करके खड़े होंगे और जब आंखें खोलेंगे तो पास वाले को देखेंगे क्या पहना है क्या कर रहा है। अरे देखने भगवान को आए, उसको देखते ही नहीं। इसलिए भीष्म पितामह की प्रार्थना में लिखा है खुली आंखों से भगवान के मुख के अमृत को पी रहे थे। आंखों से भगवान के रूप को पीना चाहिए, और ये सिर्फ गोपियों को समझ में आया का एक आंखें दी दो, हे ब्रह्मा तुमको बनाने तो आती नहीं, दो में से एक तो हम रखते हैं हमारी निंदा करने वाले को, कोई देख तो नहीं रहा, और आधी सी आंख से कृष्ण को देखते हैं, फिर ऊपर से पलक गिरती है और दिखता नहीं है, तू बिल्कुल मूर्ख, आंख भी बनाना नहीं तुमको आए। तो देखने का भाव जो है वो उनका है कि पेट भरता ही नहीं है देखने से, देखे ही जाए देखे ही जाए देखे ही जाए ऐसा रूप है, आंख वहां से हटती नहीं। वैसे जब दर्शन करें तो कम से कम आज का श्रृंगार भगवान का रात तक याद रहना चाहिए, और आप अच्छी तरह से देख लो। हमारे पुराने मंदिरों में हमने देखा था, मंदिर के बाहर एक स्थान होता था बैठने का, तो बूढ़ी माता आती थी अंदर से दर्शन करके, पहले सीधा दर्शन नहीं करती थी, पहले आईने में ऐसे दर्शन करती थी, जब तिलक लगाती थी भगवान को आईने में देखती थी, फिर नजदीक जाके देखती थी, फिर बाहर बैठ गई, फिर वापस अंदर गई, अरे माँ कहाँ वापस क्यों जा रही है, बूढ़ी हो गई याद नहीं है भगवान ने आज नीला पहना है कि पीला पहना है, याद करने जा रही हूं। तो उसका मन था कि वापस जाए भगवान का जो आज का श्रृंगार है उसको याद करे, कि कानों में क्या डाला है और आज पांव में फूलों के है कि पायल है कि गोल्डन कलर की है कि येलो कलर, ये मेडिटेशन है। प्रभुपाद जी तो कहते हैं खुली आंखों से समाधि है भगवान का पूजा करना या दर्शन करना, खुली आंखों की समाधि है। तो भगवान के रूप को यहां मंदिर में आए तो बड़ी गंभीरता से देखना चाहिए, भाव से उसको हृदय में उतारना चाहिए। असल में ये मत्चित्ता का अर्थ ही यही है, मत्चित्ता का अर्थ एक है चित्त मुझ में लगे और दूसरा है मेरे चित्र को दिल में रखे, ये जो मेरा चित्र है इसको तुम्हारी दिल में रखो। तो मत्चित्ता की परिभाषा सही भक्त की ये है, जैसे हनुमान जी ने छाती खोल के सीताराम दिखाया, उसको बोलते हैं मत्चित्ता, जिसकी दिल में भगवान का चित्र सदा बसा रहे, ये भक्त की परिभाषा है। बोला नहीं हो तो मदगत प्राणा, फिर उसका शरीर भी नहीं रहेगा, प्राण निकल जाएंगे, ऐसा दशरथ महाराज ऐसा पिता है, जब राम नहीं आए तो प्राण निकल गए। तो ये भगवान के रूप में इतना आकर्षण है, इतना आकर्षण है कि उसका नाम ही कृष्ण है जो सबको आकर्षित कर लेता है। वैसे आकर्षण का उदाहरण देते हैं चुंबक से, चुंबक मग्नातीस क्या बोलते हैं, मैग्नेट, और किसको खींचता है, लोहे को, और मैग्नेट किसका बना हुआ है, लोहे का। ऐसे भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद आकर्षक है, और हम जीव भी छोटे से लोहे के किले हैं, बने उसी मसाले के हैं, हमको जाके चुंबक को चपकना चाहिए, ये नेचुरल है नहीं। अच्छा कोई छोटा सा कील चुंबक को कब नहीं चमकता है, कोई नहीं चपकता है, क्यों नहीं चपकता है, जब रस्टेड हो जाए, जंग लग जाए, बरसात का पानी लग जाए, तो चुंबक के ऊपर रखो तो भी नहीं चपकेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण तो आकर्षक है, परम सुंदर है, सबको आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन जीवों के ऊपर जंग लग गए हैं तो वो चपकते नहीं है भगवान। अब क्या करना चाहिए? जंग उतारना चाहिए। अपने आप कील जंग उतार सकता है? कोई कारीगर चाहिए और उसके साथ चाहिए सैंड पेपर घिसने के लिए, और जैसे ही जंग उतर गया वो अपने आप जाके चपकेगा, जैसे कूद के जाके चपकेगा, ठीक है ना। ऐसे ये साधु संत जो है ना, इनके पास रेगमाल है, जहां जाते हैं जहां लोग हैं उसको घिसते रहते हैं ताकि उनका जंग उतरे। तो साधु काम करेगा ना, ये सामान्य लोगों का काम नहीं है। चेतो दर्पण मार्जन, वो चेतो दर्पण मार्जन में भगवान के नाम से जब उतार लेंगे तो वो चपक जाएगा जाके। वो चपक क्या जाएगा? उसी आदमी को चपक जाएगा, भगवान तो दूर है, क्योंकि भगवान से वो चपका हुआ है ना। मैग्नेट को ऐसे खड़ा करो तो एक ऊपर कील है तो नीचे 10 और लटकी होंगी, इसको परंपरा बोलते हैं। भाई एक दूसरे के सारे ऐसे ऐसे लटक जाती है ना, तो वो अपने आप वही चपका देगा सबको। तो ये कृष्ण की आकर्षण का कारण है कि परम सुंदर है। एक तो रूप का वर्णन है कि उसके रूप के समान और कोई रूप है ही नहीं, सारी सुंदरता उसी से है। दुनिया में कोई भी सुंदरता दिखती है वो तो वहीं से निकल के आई। और दूसरा बोला वीर्य। वीर्य का मतलब बल, भगवान के समान बल। के 7 साल का बच्चा गोवर्धन उठा लिया, ये भगवान के बल वीर्य का ऐसा उदाहरण है कि आज अगर कोई बच्चा ऐसे उठा ले तो सारे टीवी वाले आके उसका इंटरव्यू लेके पूरी दुनिया में वो फैल जाए कि इसने पर्वत उठाए। आज ऐसा कोई घटना हो जाए तो कितने लोग इकट्ठे हो जाएंगे, कैसे इसने कर लिया। लेकिन भगवान ने कर लिया, अभी कोई सुनने में कैसे पता नहीं किया होगा। और क्या उदाहरण दिया है वहां सुखदेव गोस्वामी ने, जैसे मशरूम को उठाया, छाता था छोटा था उठाया, बच्चे उठा लेते हैं ऐसे उसको उठाया, ऐसे मेरे ख्याल उठाया भी नहीं, ऐसे कर ऊपर फेंका फिर हाथ के ऊपर ऐसे कैच कर लिया और ऐसे हाथ के ऊपर रख लिया था बस, और फिर ये कमर पे ऊपर हाथ रखा। बोला इसका कोई मेरे परेशानी नहीं है। बोला किसके ऊपर रखा था? और जब भगवान कभी कहते थे कि अरे मैंने गोवर्धन उठा के आपकी रक्षा करी की थी, तो गोवाल बाल क्या बोलते, अकेले तुम्हारा काम नहीं, हमारे डंडे थे कि नहीं, हमारे भी डंडे लगे हुए थे ना। तो इसका अर्थ है कि भगवान सब कुछ करता है लेकिन भक्तों को भी अपना डंडा लगाना चाहिए, माला उठा के हरे कृष्णा तो जपना चाहिए, अब कुछ तो मेहनत करनी चाहिए ना। और गोपियां कहती थी तुम क्या बोलता है, तुमने उठाया था? अरे मक्खन हमारे घर का चोरी किया उसके बल से उठाया, तुम्हारा अपना कहां से आया, तो हमारा माल खा के उठाया। और भगवान पता है क्या कहते थे, और गोपियां बहुत निकट की कहती थी अब सीधे हाथ पे उठाते तो पता लगता आपने उठाया, उल्टा हाथ राधा रानी का, उसके सर के ऊपर धरती मोज से खड़े थे। भाई उल्टा हाथ तो राधा रानी का है, उसी ने तुम्हारे को सहायता की तब उठाया। भगवान ने कहा असल में ये सब बातें ठीक है, हाथ का देवता इंद्र है, मैंने इंद्र के सर के ऊपर पर्वत रख लिया ताकि दबा रहे नीचे। भाई हाथ का देवता तो इंद्र है ना, तो उसी के सर के ऊपर रख दिया मैंने, आप चुप करके बैठा रहेगा तो अपने आप उसका जो मद हो गया है वो नीचे उतर आएगा। तो वीर्य भगवान की ऐसी अद्भुत लीलाएं है वीर्य की। पूरा शास्त्र भगवान के वीर्य शक्ति जो उनका प्रदर्शन है उससे भरा पड़ा है। बाल लीलाएं में तो कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाया वृंदावन के अंदर, और सब भारी असुरों का संहार किया, और उसके बाद भी शल्व जैसे और दंडवक्र जैसे उन सबका उद्धार कैसे किया है, ये भगवान का वीर्य है। और वीर्य के बाद है गुण। ये गुण में भगवान का सबसे बड़ा गुण जो भक्तों को पसंद है वो कौन सा है? कौन सा? वो एक हमारा कौन आचार्य कहते भक्त वत्सल सुनता हूं तो मुझे डर लगता है, मैं भक्ति नहीं हूं तो मेरा कैसे उद्धार होगा, इसलिए कौन सा गुण? दीन बंधु हो मैं, ये इसमें काम चल जाएगा, मैं बहुत दीन हूं, भक्त पता नहीं हूं कि नहीं हूं लेकिन दीन हूं। और एक भगवान का बहुत सुंदर गुण है सोशल है, एक शीलवान है, भगवान को कहते शीलवान। शील भगवान का ऐसा गुण है कि सब कुछ बड़ा करने के बाद भी बड़ा अपने आप को नहीं बताते और छोटा काम कर लेते हैं, जैसे अर्जुन का रथ चला रहे, ये भगवान का शील है। और युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सबको काम बांटा, भीमसेन को कहा कि तुम प्रसाद बांटना। बोला क्यों? बोला जो ज्यादा खाता है लोगों को ज्यादा देगा, किसी भूखे को तो वो खाता नहीं है, दूसरे को इतना इतना देगा भूख मार देगा। प्रसाद बांटने के लिए कम से कम जो अच्छी तरह से खाता हो उसी को बांटने वाला बनाना चाहिए। ये भगवान ने चुन के बांटा था। और ये कथा कहे तो गुरुकुल के टीचर कहते हैं आप सत्य कहते हो, ये सही है, भगवान ने शिक्षा दी है। बच्चे प्रसाद मांगते वो जितना खाते हैं इतना देते हैं, हमको 20 बार मांगते तो भी पेट नहीं भरता। देने वाले को तो दिल भर के ऐसे देना चाहिए। और सहदेव को कह दिया कि जो बड़े साधु आए उनकी देखभाल करना उन विशेष रूप से। लेकिन भगवान को बोला आप क्या करेंगे, तो क्या बोला, सबके पत्तल उठाने की व्यवस्था करूंगा, साधुओं के मैं सब खड़ाऊ संभाल के रखूंगा। ये शीलवान है, भगवान का शील है। और उसी भगवान की उसी राजसूय यज्ञ के अंदर अगर पूजा हुई तो ये शील भगवान का मतलब है किसी सामने वाले व्यक्ति को झिझक न हो जिसके पास जाने में, जो सामान्य लोग उसको मिल सके। प्रभुपाद ने एक उदाहरण क्या दिया है, कुंती महारानी की प्रार्थना में कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय, तो उसने एक उदाहरण क्या दिया है कि श्री रामचंद्र तो राजा राजपुत्र था, उसको मिलना मुश्किल था, लेकिन ये ग्वाला था गैया चरा था कोई भी कहीं मिल सकता था। हाँ, इसको तो भीलनिया भी देख सकती थी और हिरणिया भी देख सकती थी और बंदर भी इससे बात कर सकते थे, तो इतना सा इजीली अप्रोचेबल भगवान है, बहुत दयालु है और इजीली अप्रोचेबल है और बड़ा शीलवान गुण है उनका। जिससे रामचंद्र को भी बहुत शीलवान गुण कहे, शील जो गुण है भगवान का उसी के कारण हम जैसे भौतिक कचरे से भरे हुए शरीर को सेवा में स्वीकार करते हैं कितने बड़ी शीलवान है। ये जो हमारा शरीर है ये असल में कचरे का एक थैला है, पैकिंग सिर्फ अच्छी है। एक उर्दू कवि की कविता है, पांच तत्व का पुतला कीना नाम रखो या बंदो, पांच चीज के मसाले का ये शरीर बनाया, इसका नाम रखा बंदा इंसान। बाहर सूरत सुंदर देखे अंदर माल भर दिया गंदा। अरे आंख से निकालो कान से निकालो नाक से, सब कचरा ही निकलता है, कहां है अंदर ही पड़ा है और कहीं है। बाहर से सूरत सुंदर देखे अंदर माल भर दिया गंदा, कारीगर ने कारी करी की ऊपर फेर दिया रंदा। ऊपर ये स्किन की ऐसी ड्रेसिंग की है कि सब अच्छे लग रहे हैं, और इससे थोड़ी उतर जाए और किसी को बर्न होता है तो भूत करके भाग जाते हैं, ये सिर्फ ड्रेसिंग ऊपर की अच्छी है। बंदा तो बंदगी नहीं तो गंदे का गंदा, अगर भक्ति नहीं करता है तो आदमी जैसा अंदर गंदा ऐसा बाहर गंदा, बंदगी का मतलब भक्ति। तो ऐसा हमारा शरीर है, इससे भगवान हमारी सेवा ले रहे, कितना बड़ा शीलवान है, कितना बड़ा उनका उदार गुण है। समझ में आ रहा है कि कितना बड़ा दयालु है भगवान, कितना शीलवान है। अब इसको छोड़ के और कहां जाना चाहिए, ऐसा भगवान आपको इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा जो अपने भक्त के घोड़े हांकता हुआ ड्राइवर बन के। ऐसा भी नहीं है कि आजकल के ड्राइवर की जैसे मालिक चलाता है और गाड़ी को छोड़ता है, वो घोड़ों का मालिश भी करता था, घोड़ों को पानी भी पिलाता और सोता भी घोड़ों के तबेले में था। ऐसे नहीं है कि बड़े जाके शिवर में सोता था, जहां घोड़े थे उन्हीं को देखभाल करता था। ये भगवान क्या शील का ऐसा गुण है कि इसको छोड़ के और किसके पास जाए, और कौन ऐसा है। इसलिए लोग जब कोई अनाथ कहते हैं तो भगवान कहते क्या मैं बैठा हूं सनाथ, ये अनाथ मूर्ख क्यों अपने आप को बोलता है, मैं सबका नाथ हूं तो तुम्हारा नाथ भी तो हूं ना, तुम अनाथ कब से हो गए। तो असल में सनाथ सबका नाथ है, शीलवान है। और चौथा गुण यहां शुरू लिखा है श्रिय, ये श्रिय द्वारकाधीश में, द्वारकाधीश का क्या वैभव था। श्रिय का मतलब है वैभव, जिसके पास अनंत श्री हो। तो ये चार गुण यहां वर्णन किया है, और भी अनंत गुणों का रुक्मिणी देवी ने श्रवण किया था। अरे किससे श्रवण किया था? तब कहते हैं ग्रही आगते, ग्रही आगते मतलब घर में आए हुए। घर में कौन आए हुए? श्री प्रभुपाद कृष्ण परम पुरुष भगवान में लिखा है नारद आदि ऋषि। तो ऐसे संत भीष्मक महाराज के घर में आया करते थे। तो ये है गृहस्थी की महानता कि साधु संत को घर में बुलाते हैं और आ जाए तो सौभाग्य मानते। पहला प्रभुपाद जी ने पुस्तक जो लिखा था पाश्चात्य देश जाने से पहले, इस्कान बनाने से पहले, वृंदावन के वर्षा ऋतु और आटम का लाइट ऑफ भागवत, तो उसमें एक स्थान पे लिखा है कि बरसात ऋतु में आकाश में बादल आता है तो मोर आनंद में मगन होकर नाचता है। ऐसे ही सदगृहस्थी के घर में साधु आता है तो आनंद में प्रफुल्लित हो जाता है। और आजकल घर के बाहर कुत्ते को बांध देते। पहले प्रफुल्लित होते थे कि साधु आ जाए, अब हरे कृष्णा। पहले गार्ड घर में होता था, डाक बाहर होता था, अब डाक घर में गार्ड बाहर। ये कल्चर है आज का ना। पहले भगवान का मंदिर अंदर होता और कुत्ता बाहर होता था, अब कुत्ता अंदर है और मंदिर है ही नहीं, कहां गया पता नहीं। भाई मंदिर के आगे कीर्तन करना चाहिए, नाचना चाहिए, बहुत अच्छा अल्टर होना चाहिए। बड़े घरों के अंदर तो बोतलों का अल्टर है, नाचते वो भी है। वो मंदिर की जगह पे बहुत दूसरा अल्टर बना देते हैं और हम खरदाल बजाते हैं और वो बोतलें बजाते हैं और गिलास बजाते हैं। काम वही कर रहे हैं लेकिन वो नरक में जाने का कीर्तन कर रहे हैं और ये गोलोक का कीर्तन कर रहे हैं। काम तो वही कर रहे हैं लेकिन इतना पतन हुआ है। तो घर के अंदर साधु का आना कितना महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद की अपनी जीवनी से कि उनके पिताजी साधुओं को रोज घर में लाए, प्रेम से भोजन खिलाए और कहे कि राधा रानी का भक्त बने, ऐसी आशीर्वाद करो। तो भीष्म माता, ये वैदिक संस्कृति से लगता है कि पहले साधुओं के घर में आने के ऊपर ग्रस्तों को आनंद मिलता था और साधु जाके हरि कथा बताते थे। हरि कीर्तन और हरि कथा बताना ही साधु का मुख्य उद्देश्य था, कुछ मांगना उद्देश्य नहीं था। ये सुखदेव महाराज के लिए जब लिखा है कि किसी के घर के बाहर जाके क्यों खड़े होते थे, दूध नहीं चाहिए। लेकिन कैसे भी साधु का दर्शन मात्र से, दो शब्द सुनने से सामने वाले का घर बैठे उद्धार हो जाता। तो ये सदगृहस्थी के लिए साधु का आना और सत्संग करना। अभी लोगों कहते टाइम नहीं है, राजा महाराजों को टाइम था। भीष्म महाराज को पूरा राज का संचालन चलाना था, वो कथा सुन सकता था। और यहां हमारे को एक छोटा सा दुकान चलाना है, हमारे पास टाइम नहीं है। कितना बड़ा अंतर है। महाराज युधिष्ठिर तो हाथ जोड़ के नारद ऋषि को कहते हैं कि हम ग्रह मूढ़ थी, हमारी बुद्धि ग्रस्त में अटकी हुई है, आप कोई आसान रास्ता बताइए जिससे हम ग्रस्त भी आनंद में रहे। और क्या उत्तर दिया सब ग्रस्तों के लिए नारद जी ने, जितना सुंदर ग्रस्त का धर्म सातवें स्कंद के 14वें अध्याय में है भागवत में, इतना और कहीं दुनिया के ग्रंथ में नहीं। क्या कहा? हरि कथा सुननी, वासुदेव अवतार अवतार कथा सुननी चाहिए। आई कथा सुनाने वाला साधु आएगा तब सुनाएगा ना। तो साधु का संग और हरि कथा ग्रस्त के लिए सुख का परम साधन है। तो भीष्मक महाराज ऐसे धार्मिक थे कि उनके घर में साधुओं का आगमन लगा रहता था। और साधु आके क्या करते थे? भिक्षा मांगते थे? कुछ मांगने आते थे? बोला नहीं। क्या करने आते थे? गीये मानस गाते थे। क्या गाते थे? ऊपर लिखा है भगवान श्री कृष्ण के रूप वीर्य गुणशील और यश ऐश्वर्य गाते थे। इससे यह सिद्ध होता है कि उस वक्त भगवान श्री कृष्ण की महिमा पूरे भारतवर्ष में गाई जाती थी और साधु संत महात्मा गाते थे। और जब भी घर में साधु आते हैं तो हरि कथा और हरि कीर्तन करते हैं, ये साधु की पहचान है। साधु आके कुछ मांगे है, वो साधु की असल में अयाचक साधु सबसे उत्तम साधु माना जाता है, जो कुछ मांगता नहीं। और वैसे भी सही साधु की पहचान है अधिक दे अल्प ले, अधिक दे अल्प ले। ले अल्प ले का मतलब उसकी आवश्यकता क्या है, दो रोटी की ज्यादा से ज्यादा, वो तो उतनी ही भिक्षा उसके लिए काफी है, लेकिन दे क्या उसको, अधिक दे हरि कथा हरि कीर्तन जो दुर्लभ है वो घर में जाके दे। इसलिए साधु तीर्थ से ज्यादा महान है, क्योंकि तीर्थ में जाएंगे तब पवित्र होंगे, लेकिन साधु घर में आके कृपा करता है। तो साधु के प्रति सद्भावना ग्रस्तों में कम कब से हुई, जब मांगने वाले साधु पैदा हो गए, देने वाले रह कम रह गए और मांगने वाले ज्यादा हो गए। अब लोगों ने ये एक धारणा बना रखी है कि कोई लाल कपड़े वाला ऐसे साधु आया तो ये मांगने ही आया, भिखारी समझ लिया उनको, जबकि ये उदारता से देने वाले हैं। और साधु को हमेशा देने वाला ही होना चाहिए, लेने की आशा ही नहीं होनी चाहिए। लेना है तो भगवान से लेना है, दुनिया से लेके क्या करेगा, देने वाला तो भगवान है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कहीं भी जाए तो हृदय में लोगों को भगवान की ये चार चीजें हैं, ऐसे यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, ये साधु का लक्षण है। तो जाते थे उनसे सुना, और सुनने से प्रभाव क्या पड़ा, इसमें पहली लाइन में रुक्मणी का सुनने में आसक्ति है, वो दिखा रहा है कि ऊपर से ही सुन लिया, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती किसी ने कहा तब सुना, नहीं अपने आप, तो उसकी सुनने में रुचि है। और उसके बाद किसके किस बात सुनने में रुचि है, मुकंद के रूप गुण लीला में रुचि है सुनने में। किससे सुनने में रुचि है, जो साधु महात्मा आते हैं। और इस सुनने के बाद उसने निर्णय क्या किया, मैंने का मतलब उन्होंने निर्णय कर लिया, मान लिया। तम, तम का मतलब जिसका मैंने गुण रूप सुना है उस श्री कृष्ण को, सदृशम मेरे समान है, सदृशम का मतलब मेरे समान है, पति जिसको मैं पति के रूप में अब ग्रहण करती हूं। सदृशम का मतलब समान, गुण में रूप में समान है, मेरे लिए समान है, और उसको पति, पात्यते इति पति, पाती उसको कहता है जो रक्षा करता है, और पत्नी उसको कहते हैं जो पतन से बचाए, पति को पतन से बचाए उसको पत्नी कहते हैं, पत्नी का मतलब पतन से बचाने वाली, और पति का मतलब पात्यते इति पति, जो रक्षा करे। सो इस श्लोक का विशेष तात्पर्य तो नहीं है, भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता, वीरता, दिव्य गुण और उनके ऐश्वर्य, मुकंद के ऐश्वर्य का साधु जनों से अपने महल में कीर्ति सुनने से रुक्मणी देवी ने निर्णय कर लिया कि ये मुकंद ही मेरे योग्य पति है। इससे हम सबको ये प्रेरणा मिलती है कि हमको जीवन में ये निर्णय कर लेना चाहिए कि हमारे योग्य हमारा स्वामी श्री कृष्ण है। अब लक्ष्मी देवी जिसको स्वीकार कर लिया, वो ये सारे दुनिया लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं, तो जो लक्ष्मी ने स्वीकार किया उसको स्वीकार करना तो बुद्धिमानी है कि नहीं है भाई, दुनिया सारी तो लक्ष्मी के पीछे भाग रही है, और लक्ष्मी जिसके पीछे भाग रही है वो तो लक्ष्मी से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा ना। तो ये तो लक्ष्मी पतियों को पूछो कि लक्ष्मी, इसे लक्ष्मी पति तो भगवान ही है, लेकिन लोग मूर्खता में अपने आप को, वैसे धन जिसके पास है उसको धनवान कहते हैं, लक्ष्मी पति नहीं कहते, ये तो भगवान ही लक्ष्मी पति। तो ये बहुत बड़ा एक निर्णय लेना चाहिए। इस निर्णय में मुख्य बात ये दिख रही है कि वैसे तीन चीजें, अनन्य अंशित्व, हम और किसी के अंश नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, ये निर्धारित कर लेना चाहिए जीवन में। हम किसी देवता का अंश नहीं है, न किसी संसारी पुरुष के अंश हैं, हम श्री कृष्ण के अंश हैं। और जो जिसका अंश है उसी की तरफ जाता है, ये प्रकृति है, ये नियम है। जैसे पत्थर है, ऊपर फेंको धरती की तरफ वापस आएगा ना, मिट्टी ऊपर फेंको नीचे आएगी, क्योंकि धरती का अंश है। आग जलाओ कहीं तो उसकी लौ ऊपर जाएगी, क्योंकि सूर्य का अंश है। पानी कहीं भी डालो तो समुद्र की तरफ जाएगा, क्योंकि समुद्र का अंश है। ऐसे जीव भगवान का अंश है, उसको भगवान की तरफ जाना चाहिए। इसको बोलते हैं अनन्य अंशित्व। हम किसी और के अंश नहीं है, हम भगवान के अंश हैं। दूसरा है अनन्य भोक्तित्व। भगवान ही भोगता है और कोई भोगता नहीं है। इसलिए हम सामान्य उदाहरण देते हैं, जब भगवान को राजभोग अर्पण करते तो उसको क्या कहते हैं? भोग। भगवान को अर्पण करने वाली चीज को क्या बोलते हैं? भोग। और जब बाहर आती है तो क्या बोलते हैं? तो हमारे को खाना चाहिए प्रसाद, और भोग है भगवान का। और हम जब भोग लगाते हैं तो फिर रोग लगता है। तो भोग खाया नहीं, रोग लगा नहीं, कि भोग भगवान का है, हमारा नहीं। तो भोग अनन्य भोगतत्व, तो भगवान ही केवल भोगता है, हम उसके भोगे हैं। हम इसी किसी और के भोगे हो गए तो कभी भी हम सुखी नहीं हो सकेंगे। हम किसी और के भोगे नहीं हैं, भगवान के भोगे हैं। इसका मतलब हम किसी काम के लायक हैं तो बेकार है, नालायक दुनिया के लिए हो गए तब भगवान के लायक बनो। दुनिया के लिए नालायक हो जाओ तभी भगवान को लायक हो गए। भाई दुनिया कहेगी हमारे काम का है, इसका मतलब दुनिया भोग रही है ना तुमको, तो दुनिया भोग रही है तो भगवान कैसे भोगेगा? अनन्य अंशित्व, अनन्य भोग। अब रुक्मणी क्या कहती है? भगवान ही मेरा, वही भोग्य है, मैं उसके। और कोई उदाहरण क्या देती है? कोई श्यार गीदड़ आके शेर का भाग ना ले जाए तो अनन्य लोग जो है वो शिशुपाल आदि, ये तो गीदड़ हैं, और आप है भगवान सिंह, आप अपने भाग को ले जाइए। ये सात श्लोक बहुत रुक्मणी के समर्पण के श्लोक हैं। ये सर्वधर्मान परित्यजा की भाषा है, अपने आप को समर्पण करने के लिए सात ही श्लोक रुक्मणी के पत्र के हैं, जिसके ऊपर लिखा यह रुक्मणी वाच है, कि रुक्मणी के शब्द हैं। तो ये नीचे आगे आएगा, इसमें एक मुख्य बात बीच में आ गई। अब रुक्मणी ने ये तो निर्णय कर लिया कि भगवान को ही पति के रूप में मुझे वरण करना है। तो अनन्य क्या बोला? अनन्य अंशित्व, अनन्य भोक्तित्व, और तीसरा है अनन्य अहरत्व। इन तीनों को बोलते अकार त्रि संपना महाभागवत उच्यते। सारे वैष्णव संप्रदाय ये निर्णय कर लिया है, जिसमें तीन अकार है, ये अनन्य अंशित्व, अनन्य भोक्तित्व, अनन्य अहरत्व, वो महाभागवत पुरुष है। अहरत्व मतलब पूजा अर्चन, भगवान ही पूजनीय है, उसी की सेवा करनी है और किसी की नहीं। वो सबको आदर देना है लेकिन समर्पण उसको करना, सब कुछ वही है। तो ये रुक्मणी जी के जीवन में जो अर्पण है और उसके लिए श्रवण है, तो श्रवण से अर्पण, श्रवण से क्या प्राप्त हुआ? यहां रुक्मणी जी ने ये सुना, इससे कौन सा सिद्धांत स्थापित होता है? संबंध, भगवान से संबंध श्रवण से हुआ। क्या श्रवण से? भगवान के गुण से। तो भगवान का गुण सुनने से भगवान से संबंध होता है। और अब रुक्मणी क्या करने जा रही है? भगवान को दूसरा संबंध क्या स्थापित करने, संबंध के बाद तो क्या स्थापित करने चाह रही है? सेवा में लगने चाह रही है। अब जाएगी सेवा करना चाहती है, तो सेवा करने के लिए अभिधेय। अब अभिधेय के लिए किसकी अभिधेय की परिभाषा क्या है? भक्ति।
अभिधेय किसको बोलते हैं? अभिधेय की परिचय भाषा भक्ति है कि नहीं? हाँ, अब भक्ति कहां से मिलेगी? हाँ, भक्तों से। भक्ति जन्म हईते भक्त संगे, सिर्फ भक्त के संग में भक्ति का जन्म होगा। तो रुक्मणी ने अब क्या काम किया, निर्णय क्या ले लिया रुक्मणी ने? टाइम बहुत कम था, ये बहुत बड़ा इसमें विशेषता यह है कि बाकी 3-4 दिन बचे थे, और ऐसे हमको सोचना चाहिए, हमारे जीवन में भी पता नहीं कितने दिन बचे हैं, तत्काल हमको कुछ काम करना चाहिए, रुक्मणी की तरह निर्णय लेना चाहिए। तो समय की भी इसमें अवधि बहुत कम है, तो रुक्मणी ने क्या किया, एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को भगवान श्री कृष्ण के पास संदेश देकर भेजा। ये असल में सिद्धांत से यह स्थापित होता है कि जीव को, रुक्मणी जीव नहीं है, लेकिन उस उदाहरण यह रहेगा कि जीव को भगवान से मिलाने के लिए कोई विश्वास पात्र भगवान का, और जीव का हितकारी और भगवान का अनन्य भक्त होना चाहिए, तो दोनों का संबंध हो सकता है। इसका मतलब एक उदाहरण देते हैं कि लड़की जब विवाह के योग्य होती है तो उसके लिए पहले लड़का ढूंढा जाता है जो योग्य हो, और फिर पंडित को बुलाया जाता है कि दोनों का विवाह संपन्न करो, ठीक है ना? तो यहां मानो रुक्मणी विवाह के योग्य है, उसने चुन लिया भगवान श्री कृष्ण को, अब पंडित को बीच में वो लगन कराने का एक संबंध के लिए भेज रही है। तो पंडित का कितना काम होता है? विवाह कराना। और पंडित जी कह दे अगर कि क्या करना है उसको ढूंढने, इतना दूर जाने का, मैं ही हूं, मेरे से विवाह कर लो, तो पंडित को क्या करना चाहिए? हाँ, ये आजकल के जो अविश्वास पात्र गुरुजन घूम रहे हैं, बोले भगवान को क्या करेंगे, हम ही भगवान है, हमसे विवाह कर लो, ये सिद्धांत की बहुत बड़ी त्रुटि है। जो भगवान से संबंध न स्थापित कराए और बीच में रोड़ा बन के खड़ा हो जाए और कहे मैं ही आपका सब कुछ कर लूंगा, वो विश्वास वाला नहीं है, धोखेबाज पंडित है। ये पंडित गया भगवान के पास, भगवान ने इसका कितना सम्मान किया, अपने सोने के आसन के ऊपर बिठाया, फिर उसको भोजन खिला के भगवान उसके चरण संवाहन करने लगे, ब्राह्मण का गोद में चरण लेके संवाहन करने लगे, और फिर प्रेम से पूछा कि जो ब्राह्मण सत्य व्रत पालन करने वाले होते हैं उनको तो मैं मेरा मस्तक झुका के प्रणाम करता हूं, ये भगवान महिमा गा के कह रहे हैं। फिर कहे आप इतनी दूर से आए, कुछ तो समाचार होगा ना, क्या गोपनीय समाचार ले आए महाराज? तो महाराज ने रुक्मणी का मानो पत्र भगवान के हाथ में दिया, भगवान ने खोला और फिर ब्राह्मण को कहा तुम ही पढ़ लो। वो इसलिए कहा कि विश पहले तो सामने वाला जो इतना बड़ा रहस्य का काम लाया है उसको विश्वास पात्र तो बनाना चाहिए ना, अब उसको पढ़ने के लिए दिया, इसका मतलब तुम्हारे हमारे में कोई अंतर नहीं, हम अपने अंतर की बात तुमको बता रहे हैं, तो वो घर का आदमी हो गया ना। तो भगवान से ये कला बहुत बड़ी उनकी सौशल्य की कला है, और पंडित जी ने वो पढ़ा और फिर कहा कि देखो अब इसके बाद टाइम बहुत कम है, अपनी तरफ से एक ही श्लोक बोला, अब आप जल्दी निर्णय कर लीजिए। अब भगवान ने उसको प्रसन्न करने के लिए कहा कि पंडित जी नींद मेरी भी बहुत दिनों से नहीं आ रही है, रुक्मणी का याद बहुत मुझे भी आ रहा है, अब चलो अभी का अभी चले थे, रात को रहे नहीं द्वारका में, और दारू का रथ मंगाया और सीधे कोंडनीपुर आए विदर्भ देश में, और किसी को बताया नहीं भगवान ने, रात को ही निकल के आए। सुबह बलराम जी उठा तो पहले फोन पे नहीं पूछते थे कि तुम हो कि नहीं हो, अरे उठ के अपना शंख बजाता था तो पता लगता था ये घर में है कि नहीं है। तो पांच जने का आवाज नहीं सुना, बलराम जी ने कहा ये क्या सुबह सुबह था, हम फोन नहीं आया। हम तो कहते हैं ओरिजिनल कंसेप्ट जो टेलीफोन की है वो भगवान की बांसुरी है, जिसका नाम लेते थे उसी की घंटी बजती थी और किसी की नहीं बजती थी। ये ओरिजिनल जो सिस्टम था, वही गोपी का नाम लिया ललिता तो ललिता को ही पता लगता था कि भगवान मुझे बुला रहा है, उस किसी की घंटी बजती नहीं थी। अरे वो तो इतना एडवांस उनका सिस्टम था कि गाय का नाम लेके गोरी कहते तो वो भी तुम उठा के गोती आती, तो वो तो पक्षी भी उसकी भाषा मानते थे। तो स्पेशल उनका जो यंत्र है ऐसा सब भक्तों को प्रेम से बुलाने वाला। सो कौंडिन्यपुर के तो सुबह बलराम जी ने कहा कृष्ण ये वो ब्राह्मण तो अवंतिका से आया था, लगता है कृष्ण अवंतिका गया, ब्राह्मण भी नहीं है कृष्ण भी नहीं है। तो एक अक्षौणी सेना लेके यदुवंश सिंह की अपना बहुत प्रिय है कृष्ण, तो उसकी आकांक्षा थी अरे हमारे शत्रु वहां जरासन वहां शिशुपाल के लिए तो बारात ही, तो सारे सेना लेके आए, बारात नहीं आए सेना लेके आए पूरे, वो तो नाम लिखा है विशेष रूप से शल शालव है और विदुरथ है और ये सब वहां है, तो जरा दुर्घटना होने की संभावना है, हो सकता है कि। तो तत्काल वो भी तीव्र गति से कौंडिन्यपुर पहुंच गए। तो महाराज भीष्मक ने चिट्ठी लिखी थी निमंत्रण पत्र द्वारका के लिए, लेकिन सेंसर करके रुक्मणी ने उसको आउट कर दिया, तो उसने सेंसर कर लिया कि नहीं भेजना है कि उनके आने से खतरा है, तो सबने वो तो उनके संग में था ना। लेकिन ये जो आ गए तो भीष्म ने कहा मैंने चिट्ठी लिखी है इसलिए आया होगा, तो उसने उनके लिए स्वागत का बहुत अच्छा व्यवस्था किया। और यहां शिशुपाल वाले कह रहे कि ये किस ये बाराती है कि घराती है, है तो शिशुपाल की मासी का लड़का, हो सकता है उसकी बारात में आया हो। कोई बोलता नहीं पर भीष्मक महाराज ने भी हो सकता है निमंत्रण भेजा हो, बहुत बड़ा साम्राज्य है द्वारका का साम्राज्य है। अब ये बहुत बड़ी सबके बीच में कंफ्यूजन थी कि किस पार्टी का है, जैसे जैसे आजकल की शादी में कौन किस तरफ का किसी को पता नहीं लगता है, जिसके पास कोट टाई है वो खा के चला जाए। ये बहुत बड़ी समस्या है। एक जगह पार्टी हो रही थी तो 50 लोगों का ही भोजन बना था, लेकिन क्योंकि बाहर लगा हुआ था सामियाना तो सब लोग किराए के कोट लेके अंदर कटे हो गए, तो आदमी 200-400 हो गए। तो उसने बोला बाराती कौन है और घराती कौन है, भाई बारात में कौन आए हैं, लड़की वाले कौन है लड़के वाले कौन है, तो आधे उधर गए आधे उधर गए बाकी 50 को छोड़ के। उन्होंने बोला मेरी रिटायरमेंट की पार्टी है तुम क्यों आए हो यहां। लड़के लड़की वाले तुमको यहां कोई शादी नहीं आए कैसे, निकालो इनको बाहर। ये रिटायरमेंट की पार्टी में तुम शादी वाले कहां से आ गए। लोग कहीं से भी आ जाते। तो ये बहुत बड़ी समस्या, वहां किसकी तरफ से आए। तब तो पूरी सेना भी आके पहुंच गई, तो अब तो बड़ा समस्या ये हो गई उन सबका व्यवस्था, तो महाराज भीष्मक ने तो फर्स्ट क्लास कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ से परेशानी शुरू हो गई। ये आए हैं कुछ ना कुछ दाल में काला, कुछ गड़बड़ करेंगे, अब सावधान रहना। रुक्मणी की चिट्ठी में विशेषता क्या थी, 7 श्लोकों में पहले श्लोक में भगवान के, मेरे ख्याल में ये श्लोक 4-5 पढ़ लें आज रुक्मणी के मंगलम के, 37 श्लोक से रुक्मणी मंगलम शुरू होता है और अब प्रश्न उत्तर के लिए रखते हैं, लेकिन ये पहला श्लोक पढ़ लेते हैं। श्री रुक्मण्य वाच, ये रुक्मणी के वचन है व्यासदेव कहता है,
श्रुत्वा गुणान् भुवनम् सुंदर श्रवताम ते।
हे भुवन सुंदर, वहां सिर्फ रूप का सुना था और यहां उसको और ज्यादा विशेष लिखा है, आपके भुवन सुंदर आपके गुणों को मैंने सुना, और जो आपके गुण सुनता है वो आपको वर्ण नहीं करे, ऐसे कैसे हो सकता है। शुण्वता मैंने सुना गुणान आपके गुण भवान भुवन सुंदर त्रिभुवन सुंदर। ये भीष्म पितामह दूसरे श्लोक में, पहले श्लोक में क्या कहते हैं, इति मति उपकल्पिता वितृष्णा भूमना, ये त्रिभुवन कम है। तो हे मेरी, हे श्री कृष्ण, ये मेरी मति, मति उस बुद्धि को कहते हैं जिसने भगवान का ग्रहण किया, जो बुद्धि भगवान को ग्रहण कर ले वर्ण कर ले उसको मति कहते हैं। मति का मतलब जिसने मत बना लिया, मत बना लिया मतलब किसी को जैसे मतदान करना, मैंने इसको चुना है, तो जिसने जिस बुद्धि ने चुन लिया उसको मति कहते हैं। और उसको व्यवसाय आत्मी मत, मत सती मति का मतलब व्यवसाय आत्मी का बुद्धि, जिस बुद्धि ने एक को ग्रहण कर लिया। तो ये मेरी बुद्धि ने भगवान आपको ग्रहण कर लिया है, और दूसरे श्लोक में उस बुद्धि को भगवान का सुंदरता का रूप क्या सुना रहे, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। त्रिभुवन कमनम, यहां भुवन सुंदर तो वहां त्रिभुवन कमनम, तीनों लोकों को आकर्षण करने वाला। तो वहां भीष्म देव जो अपनी बुद्धि को वर्णन करने के लिए भगवान को चुना है उसको उसकी सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, और यहां रुक्मणी देवी कहते हैं भुवन सुंदर। शुण्वताम ते, आपके सुनने के बाद क्या हो गया, निर्विश्य करण विवरई हरतो अंगतापम। जैसे ही आपकी सुंदरता के गुण कानों के छिद्रों से हृदय में जाते हैं तो हरता अंग तापम, जितना भी संसार का ताप है दुख है वो समाप्त हो जाता। तो भगवान की कथा तप्त जीवनम, तब कथा अमृतम, भगवान आपकी कथा गुण की हृदय को शीतल बना देती है, सारा ताप समाप्त हो जाता है। देखो बाहर कितनी गर्मी है, कथा में ठंडा है ना है ना, सह ताप हरती है कि नहीं हरती, हरे कृष्ण, ताप भी नहीं हरती है पाप भी हरती है। जो आगे बताया सुखदेव महाराज को परीक्षित महाराज कहते हैं, आपने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी से राक्षस विवाह किया, मैं उसके बारे में और ज्यादा सुनना चाहता हूं, क्योंकि भगवान की कथा एक तो मीठी होती है और एक मलपाह सारा मैल साफ कर देती है, मैल साफ कर देती है। तो कथा क्या करती है, ताप मिटाती है और पाप भी साफ कर देती है, ये कथा का प्रभाव है, बहुत मीठी बहुत मधुर होती है। तो ये आपकी कथा सुनने से, और फिर कहते हैं रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिल अर्थ लाभम, ये है उनकी लालसा भगवान को देखने की, अभी तक सुना था अब कहती है आंखों के लिए इससे बड़ा और उत्सव क्या होगा जो आपका रूप देखने को मिलेगा। अखिल अर्थम, अखिल मतलब सारा ही दुनिया का जो लाभ है वो असल में आपके दर्शन में है, तो पहले श्रवण है तो अब दर्शन की भावना है तो मिल जाए। और फिर कहते हैं रूपम दर्शम दृश्यताम अखिलात्म लाभम त्वया अच्युत, फिर भगवान का पहले श्लोक में अच्युत शब्द से संबोधन करती, और भगवत गीता में भी अर्जुन अच्युत शब्द से ही गीता शुरू करता है, सेन्योर व्योर मध्य रथ स्थापे में अच्युता, और गीता की पूर्ण आहुति भी अच्युत से होती है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तो प्रसाद अच्युता, अच्युत से गीता शुरू होती है और अच्युत से ही गीता समाप्त होती है। और यहां अच्युत से ही, अच्युत का मतलब है जिसके गुणों में भी कभी कोई न्यूनता नहीं आती और जो कभी अपने भक्तों की रक्षा में चूकता नहीं है, वचन कर दिया तो वो उसको पूरा नमे भक्त प्रणश्यति का मतलब कभी चूत अचूत है। विशति चित्त, मेरा चित्त आप में प्रवेश कर रहा है, मेरा चित्त आप में, मेरी कॉन्शियसनेस, चित्त का मतलब है कॉन्शियसनेस, जड़ नहीं मन नहीं, मेरा चित्त आप में प्रवेश कर रहा है। और उसकी वजह से क्या हो गया, मैं लज्जा छोड़ के ये आपको चिट्ठी लिख रही हूं। क्या लिखा है, अपत्रप्पम, अपत्रप्पम में मेरा जो आपके शरवण से ये लज्जा छोड़ना, इस लज्जा छोड़ने की परिभाषा कैसी है, जैसी गोपियों की घर गृहस्थी को त्याग करने की परिभाषा, ये सर्वधर्मान परित्याज की परिभाषा है कि इस वक्त मैं निर्लज हो गई हूं। भाई कुमारी कन्या किसी को चिट्ठी लिखे और किसी से राय भी नहीं ले तो ये काम ऐसा सौभन्य नहीं है, कोई मर्यादा का नहीं है, लेकिन वो भगवान को लिखे तो सबसे बड़ा मर्यादा का। तो अब मुझे लगता है कि मैं लज्जा छोड़ के ये काम कर रही हूं, इसका मतलब जिसने लोक लज्जा को छोड़ के भगवान को प्राप्त किया है, ये जो गली के अंदर हाथ ऊपर करके कीर्तन करना है ये लोक लज्जा छोड़ के कट करते, नहीं तो नहीं कर सकते। ये जितना आदमी के अंदर से ये जब तक लज्जा लोक की नहीं गई तब तक कीर्तन नहीं करेगा। अब देखना बहुत से लोग देखेंगे अच्छा लगता है लेकिन लज्जा होगी कीर्तन नहीं करेंगे, नहीं है पाँव नहीं हिलेगा क्योंकि अभी तक लज्जा छोड़ी नहीं है, क्योंकि उनके कानों में अभी हरि कथा प्रवेश किया नहीं है, उनको भगवान को देखने की अभी लालसा पैदा हुई नहीं है। दूसरे श्लोक में तो ये कही है कि लड़की जो शादी के बराबर हो गई है, तैयार हो गई है शादी के, और वो आपका गुण सुनने के बाद और किसी को चुने, ये तो उसकी मूर्खता है, वो कैसे कर सकती है ऐसे। वो कह रही कि इस वक्त मेरे विवाह का, और फिर कहा मेरा विवाह तो उधर करा रहे हैं और मैं नहीं चाहता हूं कि कोई शेर का भाग सियार ले जाए और फिर आप समझेंगे कि आपको वहां कोई आक्रमण करना पड़ेगा, फौज लानी पड़ेगी, आपको कोई सेना लाने की जरूरत नहीं है, आपको मैं बहुत ही रास्ता बताती हूं, आपको मुझे अपहरण करना है। तीन विवाह भगवान ने तीन प्रकार से रुक्मणी से विवाह किया, पहला राक्षस विवाह जो लड़ाई करके युद्ध करके और अपहरण करना, और पहला विवाह राक्षस नहीं, पहला गंधर्व विवाह। राक्षस विवाह दूसरे को मार धाड़ के करते हैं और गंधर्व विवाह जैसे गंधर्व करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं और विवाह हो गया। और गंधर्व विवाह का उदाहरण किसका है, शकुंतला और दुष्यंत, ये गंधर्व विवाह का उदाहरण है। और पुरोरा का जन्म भी गंधर्व विवाह से हुआ है, सुदामनी लड़की हो गया और बुद्ध से, वो भी गंधर्व विवाह है। तो गंधर्व विवाह भी आठ प्रकार के विवाह में ये है। सबसे अच्छे विवाह का नाम है देव विवाह, जैसे देवता करते हैं, जिसमें माता पिता लड़की के लिए लड़का ढूंढते हैं और हाथ से कन्यादान करते हैं, उसको देव विवाह कहते हैं। तो मानव समाज में उत्तम विवाह देव विवाह है, लेकिन कहीं कहीं राक्षस विवाह भी करना पड़ता है, पुलिस ले जाके जबरदस्ती उठा के आना और फिर उसको कभी छोड़ना नहीं। एक पति के 25 साल शादी के हो गए थे, शादी की थी सालगिरह, तो बड़ा खुश थी पत्नी, लेकिन पति बाहर पार्क में सर के ऊपर हाथ रख के बैठा था। पत्नी का आज खुशी का दिन है, आप इतने दुखी क्यों हैं? मैं कहता हूं छोड़ना नहीं वाली बात है। उसने कहा आपको याद है 25 साल पहले जब हम आपस में गंधर्व विवाह करके मिलते थे, आपका पिता पुलिस ऑफिसर था, एक दिन मुझे बुलाया कि या मेरी लड़की से शादी करो नहीं तो 25 साल जेल में जाना पड़ेगा। आज मैं सोचता हूं जेल में गया होता तो आज आजाद हो जाता। पहला ऑप्शन लिया होता तो अच्छा था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो रुक्मणी ने अपने अपहरण का सार के हम कैसे जाएंगे पूजा करने, मेरे साथ सिर्फ कुछ सहेलियां होंगी, कुछ बूढ़ी माताएं होंगी और आप वहां से आके मुझे ले जाना वरण करना, तो इसमें कोई खून खराबा भी नहीं होगा, आपको ये भय भी नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने ऐसे ही किया, लेकिन उस वक्त रुक्मणी की सुंदरता का एक 28 एक रुक्मणी की सुंदरता के गुण लिखे हुए हैं। उसमें पहला गुण है रुचिर आनंद। आनंद कहते हैं मुख, जिनका मुख इतना सुंदर है, और उसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जब कौंडिन्यपुर मंदिर में पूजा करके रुक्मणी बाहर निकली और कृष्ण को देखने के लिए वो सर थोड़ा ऐसे ऊपर उठाया और उसके मुख के तेज को देखकर हाथी घोड़े के ऊपर बैठे हुए सिपाहियों के अस्त्र शस्त्र और स्वयं भी ऐसे नीचे टपके जैसे पके हुए बेर गिरते हैं और सारे ही नीचे पड़े आलू बैंगन जैसे बिगड़े हुए हो। और उस वक्त भगवान श्री कृष्ण रथ के ऊपर कहीं से आए और रुक्मणी को हाथ दिया और रथ में बिठाया और चल दिए, तब वो उठे, अरे वो ले गया। शिशुपाल तो बहुत परेशान हुआ। अब सब बाराती आए थे भोजन करने के लिए, कौन लड़ने थोड़ी आए थे भाई, शादी में झगड़ा किसी को पसंद थोड़ी है। लेकिन सबने अस्त्र शस्त्र उठाए तो रुक्मणी बड़ी दुखी होके कहा अब क्या होगा स्वामी। बोला भैया है पीछे, उनको मुंह देगा, बलराम जी हैं पीछे, अपन चलते हैं। ये तो आगे निकले, बलराम जी ने सबको थोड़ा सा ऐसे तो गदा उठाया तो उनने बोला हम तो भात खाने आए थे, लात ये लात खाने थोड़ी आए थे। अब सब अपने अपने रास्ते जाने लगे। जरासंध कहता है शिशुपाल 17 बार मैं भी हार के आया, तुम चिंता मत करो हमारा भी टाइम आएगा, अब चलो चलते हैं। रुक्मी ने कहा है नहीं रुको रुको, मैं जाके वापस नहीं ले आया तो कौंडिन्यपुरी नहीं आऊंगा। और वो गया भगवान के साथ युद्ध किया, पहले वचनों से फिर अस्त्र शस्त्र से भगवान ने उसको बांध के और खंभे से बांध दिया रथ के, और आधी दाढ़ी इधर से काट दी, आधे बाल इधर से काट दिए, जैसे आजकल लड़के हैं ना पता नहीं क्या करते हैं। नमूना बना के बांध दिया। बलराम जी आए, बलराम जी ने देखा कि बड़ी स्थिति गंभीर है, नव विवाहक ये हमारी भाई की जो होने वाली पहली पटरानी है उसके भाई का ये हाल किया है इसने पहले दिन। बलराम जी, कृष्ण तुमको हमारी मर्यादा यदुवंश का पता नहीं है, कभी साले के साथ ऐसा व्यवहार करते, तुमने ठीक नहीं किया, डांटने लगे। और फिर रुक्मणी की ओर देख के कहते हैं देवी वेद्र भी ये क्षत्रिय धर्म कितना कठोर है, अपने भाई के ऊपर भी बाण चलाना पड़ता है, ये क्षत्रिय धर्म ही इतना कठोर है, तो दोनों को कैसे भी, और कहते इसको छोड़ दो कृष्ण, इसको छोड़ दो, कुछ मत करना इसको। कृष्ण ऐसे आंख मारी, मुझे छोड़ा रहा है तुम्हें मारना है इसलिए। असल में रुक्मी को बलराम जी ने ही मारा, अभी कहता है साले को छोड़ दो फिर। और जब जरासंध को पकड़ के हल डाल के गले में बलराम जी लाते थे ना, तो कृष्ण कहता छोड़ दे हमारे मामे का सोसर है। बलराम कहता मामे को मार दिया, सोसर को छोड़ दो, ये कौन सा न्याय है। तो भगवान कहते अब हम कहां जाके बदमाशों को ढूंढेंगे, ढूंढ ढूंढ के यहां लाएगा तब हम मारते रहेंगे, तो बार बार 17 बार लेके आया ऐसे। तो यहां बलराम जी के कहने के ऊपर रुक्मी वापस नहीं गया, उसने दूसरा अपना नगर बसाया भोजक नाम का। तो उसके बाद भगवान ने पहला विवाह गंधर्व चिट्ठी से, फिर दूसरा राक्षस और तीसरा देव विवाह किया, उस स्थान को कहते हैं माधवपुर में। माधवपुर जब द्वारका से सोमनाथ जाते हैं तो रास्ते में समुद्र के किनारे माधवपुर जगह आती है, तो माधवपुर में एक स्थान है रुक्मणी कृष्ण के विवाह का, तो वहां उनका विवाह देव विवाह संपन्न हुआ। तो असल में ये जो द्वारका है, पुराना अनर्थ देश कुशस्थली इसका नाम है, ये महाराज
शर्याती के पुत्र क्या नाम आनर्थ, उसके लिए 100 योजन वैकुंठ का धरती के ऊपर उतारा गया है। तो ये पूरा क्षेत्र जो है कि आनर्त महाराज जो शर्याती के पुत्र हैं सूर्य वंश में, उनको शर्याती ने कहा कि देखो मेरा राज है, मैंने बाहुबल से प्राप्त किया है, तुमको मेरी आज्ञा पालन करना पड़ेगा। पुत्र बोला पिताजी आप राजा हैं लेकिन असल में सब पृथ्वी का मालिक तो भगवान है, हमको उसकी सेवा करनी चाहिए। बोले फिर भगवान से जाके अपनी पृथ्वी लो, मेरी पृथ्वी में मत रहो। तो उसने जाके भगवान की बहुत प्रार्थना की तो भगवान ने प्रकट होके कहा धरती तो इतनी है और तो है नहीं, मैं वैकुंठ से 100 योजन तुम्हारे लिए तुम्हारे नाम से स्थान देता हूं। उसका नाम आनर्थ देश हुआ, जिसको फिर कुशस्थली कहते थे महाराज आनर्थ का, और बाद में उसका नाम द्वारका हुआ। तो ये पूरा क्षेत्र है, इसमें जहां विवाह देव विवाह हुआ है उसमें भीष्म महाराज भी गए हैं, कन्यादान किया है। तो वो विवाह जो फिर संपन्न हुआ है वो माधवपुर में हुआ। कभी वहां जाते यात्रा में नीचे जाएंगे तो वो जगह है जहां माधवपुर रुक्मणी और कृष्ण के विवाह का स्थल है, और एक और जहां और स्थान है जहां रेवती और बलराम के विवाह का स्थल है, वो दामोदर कुंड से ऊपर एक स्थान है उधर उनका विवाह हुआ है। ये कौन सी जगह, जहां गिरनार में। तो ये पूरा क्षेत्र जो है उसी का है। तो आज रुक्मणी माता के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा भी ऐसा भाव बने कि भगवान श्री कृष्ण का हम वरण करें और उसी को जीवन का आराध्य बना के और उसकी भक्ति करके अपने जीवन को सफल करें। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न या जिज्ञासा? क्या पुड़िया है मेरी, दवा खानी है? मैं तो खांसी हो रही है, कुछ भेजा है। थैंक यू प्रवीण जी फॉर योर, कुछ लिखा है, कैन यू प्लीज शेयर सम ऑफ योर एक्सपीरियंस ऑफ प्रीचिंग इन हरे कृष्ण। मेरे ख्याल में आज रुक्मणी द्वादशी के दिन ये विषय ठीक नहीं है। ये तो फिर जब शिशुपाल वध करेंगे तब कथा करेंगे। हरे कृष्ण। ये मंगल कार्य है आज। हाँ भैया आपका क्या प्रश्न? उनको माइक दो भैया। क्या नाम है आपका बेटा? देवेश। सब देवताओं का मालिक है देवेश।
धन्यवाद प्रभु जी के लिए।
हरे कृष्ण।
प्रभु जी भागवत में तो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि हमें जो भागवतम पढ़ना है वो भगवान की सेवा के लिए पढ़ना चाहिए, मगर जब हम पढ़ते हैं तो कई बार हमारा ध्यान विद्वत्ता की ओर चले जाता है, और भगवान का सेवा किस तरह भागवत पढ़ के कर सकते हैं, क्या आप समझाएंगे उसे, और विद्वत्ता से कैसे मतलब बचा जा सके गलत तरीके से?
जैसे चैतन्य महाप्रभु की पूजा कीर्तन से होती है, आप कीर्तन करेंगे उसी से भगवान की पूजा होती है, ऐसे राधा कृष्ण की पूजा भागवत पढ़ने से होती है। तो भागवत पढ़ने से पहले ये पहले उच्चारण करो, श्री राधा वृंदावन चंद्र प्रीति अर्थे पाठे विनियोग, उसकी प्रसन्नता के लिए पाठ करना। ये सेवा इसलिए इसको कहते हैं कि हम जब पाठ करते हैं तो उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, और उनकी प्रसन्नता से प्रसाद के रूप में हमारे हृदय में वो भागवत अपने आप प्रकाशित होने लगेगी। हमारी बुद्धि से विद्युतता से उसको समझेंगे तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन उनके प्रसाद के रूप में। इसलिए कोई भी पूजा करते हैं तो उसके लिए तीन शब्द याद करो, हरि गुरु वैष्णव प्रीति अर्थ। हरि की, गुरु की और वैष्णव की प्रसन्नता के लिए मैं भागवत पढ़ रहा हूं। अपने लिए हमारे को कहां योग्यता है कि भगवान श्री कृष्ण भागवत, भगवान श्री कृष्ण है तो उसको हम अपनी जो, जैसे हम पूजा करते हैं गुरुजनों का शरण लेके पूजा करते हैं, ऐसे भागवत को भी हम अपने बल से नहीं समझ सकते। हरि गुरु वैष्णव प्रीति अर्थे, और भागवत की सेवा, भागवत सेवया का मतलब असल में, जैसे भागवत सेवया शब्द आता है तो भागवत पुरुषों के संग में बैठ के भागवत का श्रवण करना,
ये भागवत सेवाया है, और भागवत की सेवा करना मतलब कृष्ण की सेवा है। तो उसमें भाव ये होना चाहिए, ये किताब नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है जिसको मुझे साक्षात दर्शन करने का मौका मिल रहा है। किताब समझ के पढ़ने से सिर्फ लाइनें और लकीरें समझ दिखेंगी, अक्षर दिखेंगे, लेकिन उसको भगवान का स्वरूप समझ के पढ़ने से अंदर में कुछ अनुभव होने लगेंगे। हरे कृष्ण।
तो जब हम भगवान की सेवा के लिए पढ़ते हैं तो उसका आउटपुट क्या आता है हमारे चरित्र में, कि हमें पता चले कि हम भगवान की सेवा के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं चलता किस लिए।
जब आप भगवान की सेवा के लिए पढ़ेंगे तो भगवान आपको सेवा में लगाएंगे दूसरों को भागवत बताने के लिए, फिर आप जब पढ़ेंगे तो दूसरे को बताएंगे आज मैंने ये पढ़ा। तो आप जब ऐसे करने लगे तो समझ लो कि भगवान ने आपकी सेवा को स्वीकार किया है। जब तक ऐसे नहीं करते हैं और किताब छाती पे गिरता है और आप सो जाते हैं, इसका मतलब भगवान ने स्वीकार नहीं किया। स्वीकार किया आपने, इसका मतलब आप दूसरों को बताना शुरू करेंगे। ये भगवान की कृपा आपकी सेवा स्वीकृति का परिचय है। हाँ भाई, अब रिवर्स में जा रहे, कल के लेक्चर के बारे में बोला पूछूंगा। बोलिए।
कल आपने बताया था कि यज्ञ करते समय देवताओं को आहुति दी जाती थी और उसमें देवता लोग नहीं आ रहे थे,
क्या? हाँ,
कल का लेक्चर है। तो मेरे को ऐसे प्रश्न है कि यहाँ तो पृथ्वी भूतल है जो निम्न स्तर का है और स्वर्ग लोक में देवता रहते हैं, वहाँ तो उच्च है, तो वहाँ के देवताओं को यहाँ की आहुति की क्या आवश्यकता होती है? और
हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आते थे, हमसे लेते थे, हमको देते थे, लेकिन आजकल हरे सारी नाम संकीर्तन यज्ञ है और उस यज्ञ में तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं जीवा के ऊपर। पहले देवता यज्ञ में आते थे चेतन महाप्रभु के बाद संकीर्तन यज्ञ में भगवान स्वयं आते हैं, इसलिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अब देवता काय के लिए बुलाना है यहाँ। देवता
देवताओं के गुण हमारे अंदर आते हैं,
देवता भक्त है ना, भगवान की सेवा कर रहे हैं। ऑल दी सभी देवता वैष्णव हैं, क्योंकि विष्णु की गवर्नमेंट में काम करते हैं भाई, उसके गुण आएंगे तो हम भगवान की सेवा करेंगे ठीक तरह से। अभी तो हम संडे को भगवान की सेवा करते हैं, 6 दिन तो सरकार की सेवा करते हैं और देवता 24 आवर भगवान की सेवा में। तो देवता स्वयं वैष्णव है लेकिन देवता के पुजारी वैष्णव नहीं है। ये सिद्धांत है, बहुत बड़ा भारी सिद्धांत है। सारे भगवान देवता भगवान की सेवा में है ना, गवर्नमेंट भगवान की है उसमें सेवा कर रहे हैं। प्रभुपाद ने लिखा डेमी गॉड्स आर डिवोटीज, और भागवत के परपट में लिखा है मैच्योर ब्राह्मण नेवर डिसरेस्पेक्ट एनी डेमी गॉड इवन गेस्टली एज ए महाकाली, We don't worship them, but we never disrespect them. तो हमारी गलती क्या होती है कि हम देवता के पुजारियों के बजाय देवताओं को भी कम अकल समझते हैं, ये हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो देवता भगवान के भक्त है और उनका विधान बना रखा है संसार के अंदर के संचालन को चलाते हैं, और उनका हम यज्ञ करेंगे तो देवता प्रसन्न होंगे, बरसात करेंगे। ये एक नियम है, भगवद गीता में भगवान ने बता दिया है। सामान्य लोगों को यही रास्ता है, लेकिन भक्त बनने के बाद ये करने की इसलिए जरूरत नहीं है कि भगवान सभी तो देवता अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन नहीं, जो करते सामान्य लोगों के लिए तो वही नियम है। हरे कृष्ण। समय हो गया। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री प्रभुपाद की।